हरे कृष्णा आवाज आवाज ठीक है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारुणम।
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारुणम।
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारुणम।
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कंदर्प अंगरित अनित छदिन नील नीरज सुंदरम।
कंदर्प अंगरित अमित सबिनव नील नीरज सुंदरम।
पट पीत मान तरित सुचि नाम जनक सुतावरम।
पट पीत मान तरित दृष्टि सुचि नाम जनक सुतावरम।
भज दीन बंधु सदान वैद्य वंशन कंदनम।
भज दीन बंधु दीन सदान दुष्ट दलन निकुंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम।
सुर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
आजान भुज शर चाप धर संग्राम हित कर दूषणम।
आजान भुज शर चाप धर संग्राम हित कर दूषणम।
इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम।
मम हृदय कंजन वास कर कामादि फल दल गंजनम।
मम हृदय कंजन वास कर कामादि फल दल गंजनम।
मन जाहि राचम मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो।
मुनि जाहि राचम मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो।
करुणा निदान सुजान सील सने जान तरावर।
करुणा निधान सुजान सिर जान तावर।
कहीं बात गौर अशीष सुन सी चैत प्रिय हर सुत अलि
एहि भांति गौरी आशीष मुनि सियो सहित हिय हर सुत अलि
तुलसी भवानी पूजित मोदित मन मंदिर चलि
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली
रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण
श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण
रामचंद्र की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं
येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
हे कृष्ण
करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि
गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो भगवान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी के साथ पहुंचते हैं अत्रि मुनि जी के आश्रम में। अत्रि मुनि भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे और ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे और उनकी शादी बहुत बड़े घराने में हुई थी। किसके साथ हुई थी? अनुसुईया जी के साथ। आप लोग सब पंडित हो, जानते हो कथा। अनुसुईया जी के साथ हुई थी। अनुसुईया जी भगवान कपिल की बहन थी और उनके पिताजी कर्दम मुनि थे और देवहूति की पुत्री थी। बहुत बड़ा परिवार से थी अनुसुईया जी। और ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि और अनुसुईया जी से कहा कि आप लोग सृष्टि को बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले तपस्या की भगवान की। और बताया गया शास्त्रों में जिस तरह से उन्होंने भगवान का स्मरण किया अत्रि मुनि और अनुसुईया जी, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों उनके सामने प्रकट हो गए, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो करके कि वरदान तो कहें क्या वरदान मांगे। अनुसुईया जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप तीनों बालक बन जाएं। कुछ तो विष्णु जी जो है भगवान दत्तात्रेय बन गए उसी समय, और चंद्रमा भी के रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पे बालक के रूप में अत्रि मुनि के सामने खेलने लगे। ये कितना सौभाग्य की बात है। और आज वही भगवान उनके सामने दर्शन देने के लिए फिर, ये तो बहुत पहले की घटना थी शुरू की। तो जैसे ही भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, भगवान की उन्होंने बहुत भव्य स्वागत किया दोनों पति पत्नी ने, और भगवान को बैठा करके फिर उनकी स्तुति की। ये जो स्तुति है वो आप लोग सुनिए, बहुत ही सुंदर। अत्रि मुनि जी कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनम सुमात सुधाम्रम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदातिशेष मोचनम प्रलंब बाह विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिन्द्र संत रंजनम सुरारिबंद भंजनम मनोज बैरी बंदितम अजाति देव सेवितम विशुद्ध बोध विधई समस्त दुष्पाहम नमाम इंद्राम पतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम रदंग मूल से नराह भजंत हीन मत्सराह पतंत ते भवान प्रणय वितर्क वीच संकुले विभक्त स्वापनम सताम भजंत मुक्त मुदा निराय इंद्रिकम प्रंतते मतिम स्वकाम। तो इस तरह से अत्रि मुनि ने बहुत ही भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। तब अनसुईया जी ने सीता जी को अपने पास बुलाया। अनसुईया जी ने सीता जी को कुछ बहुत ही दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए और कुछ ऐसी औषधि लेपन के दिया जिससे उनकी कांति सदैव बनी रहे, तरोताजा बनी रहे। और उन्होंने कहा कि आप इसको आभूषण को पहन लीजिए। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा दी कि जो पत्नी होती है उसके लिए पति की सेवा ही क्या है, सरोपर होती है। क्योंकि पत्नी का जो स्वर्ग है वो पति के ही चरणों में है। इसलिए स्त्रियों को जब शादी हो जाती स्त्रियों की तो नहीं पति प्राण उनका सारा जीवन, उनका सुख दुख वो किसके, पति के चरणों में ही बीतता है। इस तरह से अनसुईया जी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि पति की भक्ति अटल होनी चाहिए। और इस तरह से अगर पत्नी अपने पति के प्रति अटल भाव से भक्ति से सेवा करती है तो भगवान के राज में उसको स्थान मिलता है और उच्च प्रतिष्ठा का पात्र बनती है। इस तरह से अनसुईया जी ने सीता जी को शिक्षा दी। सती अनसुईया जी और सीता जी एक कमरे में जा करके अनसुईया जी सीता जी से पूछते हैं कि किस तरह से विवाह हुआ, माने पूरा जो प्रसंग है आप मुझे सुनाइए। तो सीता जी उनको पूरी जो कथा आप लोगों ने सुन लिया वो पूरी कथा और अत्रि मुनि के आश्रम तक आने की जो कथा है वो सुनाती हैं। और सुनाने के बाद फिर विश्राम करती हैं और दूसरे दिन सुबह वहाँ से अत्रि मुनि के आश्रम से फिर दंडकारण्य वन की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी। ये जो दंडकारण्य वन था इसका नाम दंड क्यों पड़ा, आप सब जानते हैं कि भगवान राम सूर्य वंशी हैं। तो भगवान के ही सूर्यवंशी भगवान उन्हीं के राज्य में एक दंड नाम के राजा हुए, उनका नाम क्या था, दंड था। और दंड को विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, उस विंध्याचल पर्वत का जो दो शिखर है, उच्च शिखर, उसके मध्य भाग का जो स्थान है ये दंड को दिया गया था कि आप यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि दंड जो थे महाराजा इच्छाकु के पुत्र थे तो महाराजा इच्छाकु ने ही उनको विंध्याचल पर्वत का जो दो शिखर प्रसिद्ध शिखर हैं उसके बीच का जो स्थान है उनको दे दिया था। और इस तरह से दंड वहाँ पे रहने लगा। एक दिन तुम्हारा जो दंड उस विंध्याचल के वन में विचरण कर रहे थे, तो वहां पे उनको शुक्राचार्य की पुत्री जिसका नाम अर्जा था उससे मुलाकात हुई। तो अर्जा जो थी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता से दंड बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने संबंध बनाने का प्रस्ताव रख दिया। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे शुक्राचार्य, हमारे जो पिता हैं शुक्राचार्य जी, आप उनके शिष्य हैं, तो इससे हमारा आपका जो रिश्ता है वो तो भाई बहन का रिश्ता है, है ना, है ना। लेकिन दंड नहीं माने, है ना, अब बलपूर्वक बलात्कार किया, है ना, और बलात्कार करके फिर वो अपने जगह चले गए। शुक्राचार्य और रोती हुई जब शुक्राचार्य अपने आश्रम में गए, शुक्राचार्य को जैसे ही पता चला, है ना, शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया और पूरे वन को जो है कहा कि 7 दिन तक यहाँ धूल की, गर्म धूल की वर्षा होगी, जिससे ये पूरा वन क्या हो जाएगा, अरण्य क्या हो जाएगा, धूल दूसरी हो जाएगा, अभिरान हो जाएगा। तो उसी को दंड कारण वन कहते हैं। तो इस दंड कारण वन में भगवान विचरण कर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान कुछ आगे पहुंचे, उन्हें एक बहुत ही भयानक राक्षस दिखाई दिया, क्योंकि जंगल में तो राक्षस ही रहा करते थे ज्यादातर, पशु पक्षी और राक्षस इन्हीं का वास होता था। ऋषि मुनि भी रहते थे, जो बेचारे किसी न किसी तरह से छुप करके बच करके बड़े मुश्किल से यज्ञ अनुष्ठान कर पाते थे, जिनकी सुरक्षा करने के लिए तो भगवान इस पृथ्वी पर आए। तो विराट नाम का जो राक्षस था उसने सीता जी को पकड़ लिया और कहा कि मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा, अब तुम लोग भाग जाओ नहीं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो राम लक्ष्मण जी, भगवान राम ने कहा कि एक कैसे मुसीबत गल गई, क्या तो कदम कदम पे खतरा दिखाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि चिंता मत करिए, विलाप करने से कुछ नहीं होता, हमको इसको मारना चाहिए, जो बाण हम हमारे पास शक्ति है हम इसको मारते हैं। तो जो राक्षस था उसने कहा कि पहले बताए कि आप लोग कौन हैं, तब भगवान राम ने कहा कि मेरा नाम राम है, ये मेरा भाई लक्ष्मण है और ये मेरी अर्धांगिनी सीता जी हैं, लेकिन तुम कौन हो। तब कहे कि मेरा नाम विराद है, विराद नाम का राक्षस, मैं जो का दूसरी पत्नी सीता का पुत्र हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या से बल हो गया है, उसका वजह से जो भी जंगल में आता है उसको मैं पकड़ करके खाता हूँ, है ना, तो आज तो बहुत अच्छा हमको आहार मिला हुआ है। तो इस तरह से वो कर आते हैं। उसने जब देखा भगवान राम ने कि सीता जी बहुत घबराई हुई हैं, तब भगवान राम और लक्ष्मण उसकी दोनों भुजाएं क्या करते हैं, काट देते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। जब मारने लगे तब वो जो है अपना परिचय देना शुरू कर दिया, है ना, कि देखिए मुझे शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, आप मुझे गड्ढे में डाल दीजिए, है ना, तभी मैं, क्योंकि मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व था, ये तो दुर्वासा मुनि के श्रापवश में राक्षस बन गया था, है ना, तो मेरा उद्धार आप ही के हाथों से लिखा है, है ना, तो आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए हे प्रभु। तो लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोदा, अब भगवान राम ने क्या किया, विराट को जब तक गड्ढा तैयार नहीं हुआ भगवान अपना पैर जो है उसके गले में दबाए रखे थे है ना। इस तरह से जब गड्ढा खोद के तैयार हो गया तब उसको दोनों भाई पकड़ के डाल दिए। इतने में खूबसूरत गंधर्व बनकर प्रकट हुआ, कहा कि हे प्रभु आप मेरा उद्धार कर दिया, अब आप आगे बढ़िए, वहाँ पे सर्वभंग मुनि मिलेंगे है ना। सर्वभंग मुनि, सर्वभंग मुनि जो है वो भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। अब राम सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े सर्वभंग मुनि के आश्रम के पास। अब सर्वभंग मुनि के आश्रम के नजदीक जैसे ही भगवान खड़े होते हैं उन्हें बहुत ही आश्चर्य एक दृश्य दिखाई देता है। आकाश मार्ग की जब दृष्टि पड़ती है भगवान राम की, तो भगवान राम ने देखा, सीता जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा इस तरह से ऊपर कि वहाँ पे कोई एक बहुत ही दिव्य रथ आकाश में खड़ा हुआ है किसी के इंतजार में, और जिसमें जो घोड़े लगे थे वो हरे रंग के घोड़े थे। हरे रंग का घोड़ा आप लोगों ने देखा है नहीं, लेकिन वो जो द्योलोक से जो रथ आया था जो आकाश मार्ग में रुका हुआ था उसमें जो घोड़े थे वो हरित रंग के थे, हरे रंग के थे। और दूसरा उन्होंने क्या देखा कि महाराजा इंद्र है ना 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ पे बैठ करके और सर्वभंग जो ऋषि हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, वहीं रुक गए, भगवान वहीं रुक करके देखा। उन्होंने देवताओं से कहा कि चूंकि भगवान राम आ रहे हैं मैं उनके सामने नहीं आना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब भगवान राम रावण का वध कर दें उसके बाद ही मैं उनके सामने आऊँगा, बीच में मैं नहीं आना चाहता है ना। ऐसा कह करके वे वहाँ से अपने जो 1000 घोड़ों के रथ से आए थे और जो एक और रथ आया हुआ था ऊपर टिका हुआ था वो दोनों रथ तो खाली ही वापस चला गया, एक में तो इंद्र जी आए थे तो दोनों रथ वापस चले गए। जब इंद्र वहाँ से प्रस्थान कर लिए तब भगवान सर्वभंग मुनि के आश्रम में उनके पास सामने आ गए। सर्वभंग मुनि ने बहुत ही भव्य स्वागत किया उनका है ना। और सर्वभंग मुनि ने कहा कि आप कृपा करके यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है कि किस तरह से सर्वभंग मुनि भगवान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जितनी तपस्या की थी वास्तव में जब इंद्र आए थे तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि इंद्र किस लिए आए थे, तो सर्वभंग मुनि कहते हैं कि हे राम मैंने जो इतनी तपस्या की उस तपस्या का फल ये था कि इंद्र स्वयं रथ लेकर के आए थे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए, शरीर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आप मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं तो मैंने उस ब्रह्मलोक का जो ऑफर लेके आए थे मैंने क्या किया, ठुकरा दिया, क्योंकि आपसे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए ये जितना हमारे तपस्या का फल था ये सब हमने क्या कर दिया वापस कर, मैंने इंद्र से कहा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं है ना, जो ब्रह्मलोक के भी क्या हैं स्वामी हैं, जो पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, सारे देवताओं के स्वामी हैं, वो हमारे पास पधार रहे हैं, इसलिए आपके लिए हमने क्या किया, ठुकरा दिया। भगवान बहुत प्रसन्न है। और इस तरह से भगवान एक, मैं आप ही का प्रतीक्षा कर रहा था और अब आपके दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया और आपके सामने ही मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आपके धाम जाऊंगा। तो उन्होंने एक अपनी योग तपस्या से अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि में कूदने से पहले उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे आसन से बाहर जाइए, वहाँ पर एक बहुत परम प्रिय भक्त श्रुतिष्ण जो हैं वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको कुछ मार्ग बताएंगे ताकि आपको कहाँ आगे जाना है। तो इतना कह करके जो सर्वंग ऋषि थे उस स्वयं प्रकाशित अग्नि में प्रवेश कर गए और भगवान के सामने ही इस शरीर छोड़ करके अब भगवान के धाम चले गए। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय सिया राम,
जय रघुनंदन 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 जय सिया
राम, जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ तुमे प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुमे प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुमे प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुमे प्रणाम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ तुमे प्रणाम,
जानकी वल्लभ
राम, जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम,
श्री 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 राम जय राम जय जय राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय
जय रघुनंदन जय सिया राम,
रघुनंदन जय सिया राम। तो इस तरह से भगवान श्रुतिष्ठ के पास गए। श्रुतिष्ठ जो मुनि है वो अगस्त मुनि के शिष्य थे। आप सब जानते हैं अगस्त मुनि बहुत ही पावरफुल मुनि थे, उन्हीं के शिष्य थे श्रुतिष्ठ। श्रुतिष्ठ के बारे में ये कहा गया, जब इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली है ना, तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को कुछ गुरुदक्षिणा देना है ना। तो इन्होंने बड़े विनम्र भाव से अगस्त मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, मैं कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। तो श्रुतिष्ठ मुनि ने कहा कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं आपको दक्षिणा देना ही चाहता हूँ। तो अगस्त मुनि बोलते हैं कि तुम इतनी सेवा मेरी कर रहे हो, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है, क्योंकि गुरु की सेवा करना ये बहुत प्रेम से तुम जो सेवा कर रहे हो हमारे लिए यही दक्षिणा है ना, क्योंकि तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति प्रेम और विश्वास है, उसी प्रेम विश्वास के साथ तुम क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो इससे बड़ी गुरुदक्षिणा और क्या हो सकती है। लेकिन नहीं, उनका कि मैं फिर कुछ देना ही चाहता हूं। तो जब कभी कभी शिष्य इस तरह से हट करता है तो गुरु क्या करता है, कुछ ऐसी बात, ऐसा दक्षिणा की बात करता है जो कि आसान न हो देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम हट कर रहे हो दक्षिणा देने की, तो मुझे परम भगवान, परम परमेश्वर है ना, भगवान श्री राम का मुझे दर्शन करा देना। ये आसान दक्षिणा नहीं थी। इसलिए श्रुतिष्ठ क्या किए, भक्ति में लग गए भगवान को दर्शन करने के लिए, क्योंकि आंखों से जब खुद नहीं दर्शन हम पाएंगे तो कराएंगे कैसे दर्शन, है ना। इसलिए बहुत ही शुद्ध भाव से वे भगवान का ध्यान करके और भक्ति में लग गए, ध्यान में लग गए, और अपना आश्रम ठीक कुछ किलोमीटर की दूरी पर अगस्त मुनि के आश्रम के पहले उन्हीं के रास्ते में था। इसीलिए भगवान जब सर्वभंग मुनि के कहने पर श्रुतिष्ठ का जो आश्रम है पहले आता है। भगवान उनके पास पहुंचे और श्रुतिन ने भी बहुत ही भव्य स्वागत किया और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इंद्रराज, इंद्र हमारे पास आए थे, है ना, वास्तव में वो भी आए थे मुझे अपने धाम ले जाने के लिए, है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी भक्ति और तपस्या की थी, लेकिन मैंने आपका दर्शन पाने के लिए मैं लालायित था, है ना, और मैं चाहता हूँ कि आपने तुम मेरे ऊपर कृपा कर ही दिया, लेकिन जो हमारे गुरु जी हैं, है ना, अगस्त मुनि का जो आश्रम है, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ भी चल करके उनको क्या करिए, दर्शन दे करके उनको भी कृतार्थ करिए। भगवान राम समझ गए कि ये अपना दिया क्या जो वादा है पूरा करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए कि ठीक है, अगस्त मुनि बहुत पावरफुल मुनि थे और उनसे राक्षस थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि उस दंडकारण्य वन में जहाँ अगस्त मुनि रहते थे, दो भाई भयानक राक्षस थे, एक का नाम था वातापी और एक का नाम था इलोली करके, ये दोनों बहुत चालाक थे। ये जानते क्या करते कि ये लोग एक भंडारा की व्यवस्था करते थे और जितने ऋषि मुनि होते थे जंगल में सबको इलोली जा करके निमंत्रण देता था। ये राक्षस थे लेकिन ब्राह्मण के वेश में रहते थे, वेश बदलने मास्टर थे, है ना। तो ये इलोली क्या करता था कि ब्राह्मण बन करके सबको क्या जमाने बहुत बड़ा भंडारा है, खूब बढ़िया सुंदर भोजन है, आप लोग आइए और प्रसाद पाइए, है ना। तो जब ऋषि मुनि बेचारे आ जाते थे, है ना, भोजन के चक्कर में, है ना, तो वो क्या करता था, जो वातापी था, है ना, वो भोजन में ही अपने आप को विस्तारित कर देता था माया से, है ना, और जितने ऋषि मुनि आए थे सबके पेट में प्रवेश कर जाता था, बड़ा उत्तम माया भी था। और जब सब ऋषि मुनि के पेट में चला जाता था खाने के माध्यम से, तो जो इलोली था तो बोलता था, जोर से आवाज लगाता था कि वातापी मेरे भाई अब सबका पेट फाड़ करके बाहर आ जाओ। तो क्या करता था, जितने ऋषि मुनि भोजन किए रहते थे अंदर से पेट फाड़ करके बाहर आ जाता था। अब फिर दोनों भाई अपने असली रूप में आकर के ऋषि मुनि का मांस खाते थे। क्या प्लानिंग थी उनकी, इससे सब लोग ऋषि मुनि बहुत परेशान थे, देवता भी परेशान थे इन दोनों भाइयों से। तो जो बचे कुचे ऋषि मुनि थे वो अगस्त मुनि के पास गए थे कि आप कुछ ऐसा करिए। कहे ठीक है, कहे कि जब अब इलोली क्या किया, उस दिन गया सारे साधु संतों को भोजन के लिए बुलाया लेकिन कोई नहीं आया है ना, क्योंकि अगस्त मुनि ने मना कर दिया था, कहे कि मैं अकेला जाऊंगा। वो अगस्त मुनि गए तो जो इलोली था उससे बड़ा अच्छा व्यंजन तैयार करके उनके सामने रखा। और जो दूसरा भाई तवातापी उत्तम जो है अपनी माया से प्रवेश कर गया खाने में और अगस्त मुनि जो है उसको खा गए। और जब उन्होंने भोजन कर लिया अगस्त मुनि ने, तब वातापी जोर से चिल्लाने लगा है ना, तो इलोली जोर चिल्लाने लगे वातापी मेरे भाई अब बाहर निकलो। कम से कम आधा घंटा चिल्लाया और निकल ही नहीं रहा था है ना। तब अगस्त मुनि ने कहा कि देखो अब चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हारे भाई को मैंने पचा दिया, डाइजेस्ट कर दिया, खत्म उनका प्रोसेस। सही बात, पेट के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया। अभी डर गया तो अगस्त मुनि ने उसका भी जो है अपनी तपस्या से अपने उससे जो उसको भी खत्म कर दिया। तो जितने भी देवता थे बड़े खुश हुए कि दोनों भाई मिल करके बड़ी ही प्लानिंग से ऋषि मुनि का भक्षण कर रहे थे। तो ऐसे अगस्त मुनि जो है के पास भगवान जाते हैं। श्रुति जी पहले दौड़ के जाते हैं किसके पास, अगस्त मुनि के पास, कि हे गुरुदेव प्रभु राम पधार रहे हैं है ना। तो अगस्त मुनि को बहुत अच्छा लगा और आए और दोनों भाई राम लक्ष्मण सीता जी उनको प्रणाम किया अगस्त मुनि के साथ है ना। वहाँ रहे अगस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए किससे, अपने शिष्य से, कि दिया हुआ जो वचन था आज पूरा कर दिया। तो देखिए शिष्य इस तरह से होना चाहिए, खुद भगवान का दर्शन करे और गुरु को भी क्या कराए, दर्शन करा दे। तो श्रुति ऐसे महान भक्त थे। तो अगस्त मुनि ने भगवान से कहा कि हे भगवान श्री राम आप आगे पंचवटी में जाइए, पंचवटी में आप अपना स्थान गोदावरी नदी के तट पे अपना विश्राम बनाइए और वहाँ पे प्रस्थान करिए। तो अगस्त मुनि से भगवान विदा लेकर के पंचवटी की ओर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो उसे बताया गया है कि भगवान जब जा रहे थे ना तो धूप बहुत निकली थी, तो जहाँ जहाँ से भगवान जिस जिस रास्ते से भगवान गुजर रहे थे है ना, तो उनके ऊपर से बादलों का एक झुंड जो है चलता था है ना। बड़ा सुंदर दृश्य है कि भगवान जैसे इधर मुड़ते थे तो ऊपर जो बादल थे धूप से बचाने के लिए उधर मुड़ जाते थे, अर्थात कि भगवान की सेवा में कुछ बादल अपने आप को धन्य मान रहे थे। तो जिधर से भगवान राम गुजर रहे थे वे बादल भगवान को धूप न लगे ऐसा करके वो उनके ऊपर से जाते थे। और इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि जब आगे आगे राम चलते थे अब बीच में सीता जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे परम ब्रह्म और जीव अर्थात राम और लक्ष्मण के बीच में माया सीता जो है वो खुद चल रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस तरह से जितने हिरण थे सब भगवान की ओर निहार रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते जाते थे और पीछे जो जगह छोड़ गए वो सब भगवान क्या के राक्षसों को मार करके आगे बढ़ते गए। अभी तक कितने राक्षस मार जा चुके आप काउंट करिए, भगवान ने कितने लोगों को मारा है ना, तारका को भी मारा, कितने को मार करके भी विराट वातापी ये सब भी मारे गए। अब भगवान जो आगे जा रहे हैं तो इसीलिए जो जंगली जानवर हैं पशु पक्षी हैं वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये जो राक्षस हैं ये किसी को नहीं छोड़ते दिखाने के लिए है ना। जो मनुष्य को खा लेते हैं ऋषि मुनि खा जाते हैं और जानवरों को कैसे छोड़ेंगी है ना, तो ये हालत इसलिए सब प्रसन्न थे। भगवान राम की सुंदरता से और उनके चरणों का दर्शन करने के लिए सब लालायित थे। तो भगवान इस तरह से आनंद लेते हुए है ना और सब चारों तरफ का दृश्य देखते हुए भगवान आगे बढ़े। तो जब पंचवटी के पास पहुँचे तो उन्हें गिद्धराज मिले जिनका नाम क्या है जटायु। जटायु जब भगवान को देखे तो भगवान को प्रणाम किया गिद्धराज जटायु से। और गिद्धराज जटायु ने कहा कि हे प्रभु राम, आपके पिताजी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। महाराज दशरथ से जटायु से पुरानी दोस्ती थी, क्योंकि महाराज दशरथ जब आखेट शिकार खेलने के लिए पंचवटी जैसे राज वन में जब आते थे तो पंचवटी में उनका निवास था। जटायु ज़्यादातर तो पंचवटी में रहते थे तो उनसे मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि जटायु भी जो है। फिर जटायु ने कहा कि हमारे जो कश्यप मुनि हैं, कश्यप मुनि उनके पिता हैं, किसके कश्यप मुनि और विनीता से दो पुत्र हुए थे है ना, कश्यप मुनि से और विनीता से दो पुत्र हुए, एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था गरुण, गरुण जी है ना जो भगवान के साथ रहे है ना। भगवान के साथ गरुण जी चले गए और अरुण किसके साथ चले गए पता है, सूर्य के साथ। सूर्य देवता का जो रथ हाँकते हैं कौन हाँकते हैं, अरुण जी रथ हाँकते हैं। अरुण जी भगवान विष्णु के साथ चले गए है ना। तो ये दोनों भाई और अरुण का पुत्र मैं हूँ। जटायु किसका पुत्र था, अरुण का पुत्र था। तो उसने कहा कि हम दो भाई थे संपाति और मैं, तो मैं जटायु हूँ। इस तरह से अपना परिचय दिए कर रहे। अब भगवान ने कहा कि जटायु से मिलने के बाद पंपासुर, पंपा का जो ये जगह है पंचवटी, तो गोदावरी की तरफ बहुत ही रमणीक स्थान पे भगवान ने कुटिया बनाई और जटायु के पास ही बनाए जहाँ जटायु रहते थे है ना, उसके पास ही कुटिया। जटायु ने कहा कि आप यहीं पे अपनी कुटिया बनाइए और मैं भी पास रहूँगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो हम माता सीता की क्या करूँगा रखवाली करूँगा है ना, हम पास रहेंगे तो हमारे रहते हुए आप निश्चिंत रहने का, ऐसा करके जटायु भगवान आगे निकल गए। अब वहाँ पे बहुत ही रमणीक जगह, क्योंकि गोदावरी नदी अगर आप देखें बहुत ही पवित्र नदी है। गोदावरी नदी के तट पे भगवान ने और लक्ष्मण जी मिल करके अपनी एक बढ़िया सी कुटिया बनाई है, अब वहीं पे रहने लगे। तो तो बताया गया कि किस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण आपस में बातचीत कर रहे हैं और सीता जी कुटिया में ही वो कुछ कर रही थी, बिजी थी। उसी समय एक सुंदर नारी दिखाई दी, है ना, कुटिया की ओर आते हैं। वास्तव में वहां विचरण कर रही थी, है ना, और उस नारी का नाम क्या था, सुपनखा। ये जो सुपनखा थी ये रावण की बहन थी, जो कि बताए थे। और सुपनखा की शादी जानते किससे हुआ था, विदुज्जो नाम के राक्षस से, बहुत भयानक राक्षस था वो, है ना। लेकिन रावण इतना तुष्ट था कि एक भयानक युद्ध जब चल रहा था, बहुत भयानक युद्ध चल रहा था, तो जो विदुज्जो था सुपनखा का जो पति था, अर्थात रावण का जीजा जी लगता है ना, जीजा जी लगता, उस भयानक युद्ध में रावण ने अपने जीजा जी को मार डाला। इसीलिए जो सुपनखा थे वो बहुत रावण से बहुत खिलाफ थे कि ये कैसा भाई है कि अपनी बहन को खुद विधवा कर दिया। और जब उसको पता चला कि मेरे पतिदेव विदुज्जय का वध रावण के हाथों से, वो रावण के पास बहुत गुस्सा करके गई थी और उसने कहा कि आप जो हैं मुझे विधवा कर दिया। अब रावण से गलती हो चुकी थी, रावण भी बात करने वाला मास्टर था। उसने कहा कि बहन मैं क्या करूं, जब शादी हुई थी तभी मैंने जीजा जी को देखा था, इसलिए हम पहचान ही नहीं पाए। इतने दिन के बाद अब उस भयानक युद्ध में इतने भयानक भयानक राजाओं की राजाओं के सामने युद्ध चल रहा था, हम पहचान ही नहीं पाए, मार दिया। लेकिन अब क्या करें, इसलिए तुम क्या करो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए तुम क्या करो, तुम्हें अपने तीन अपने भाई खर और दूषण हम और तीसरा को साथ ले जाओ, ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि तीनों मेरे समान बलवान हैं और तुम एक छत्र राज करोगी पंचवटी में। ये पंचवटी कहाँ पे है पता है आप लोगों को, नासिक में, ये नासिक नाम इसीलिए पड़ा, कहे कि वहीं पे है ना ये जो लीला है पंचवटी की है, नासिक है ना। हम लोग जाके वो पूरा सब जगत देख के आए हैं, आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग जाइए और देखिए वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। तो इस तरह से सुपनखा वहाँ पे विचरण कर रहे थे, वो भगवान की सुंदरता देख करके प्रभावित हो गए। उसने अपना भेष बदन किया, सुंदर नारी का रूप धारण किया, लेकिन भगवान के सामने ये सब छल कपट नहीं चलता है, है ना। और आई और तुरंत जो है भगवान राम और लक्ष्मण जब उसको देखा तो वो लोग खड़े हो गए, एक तरफ भगवान खड़े हो गए और दूसरे तरफ लक्ष्मण राम थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हो गए। और जो है दोनों की ओर से घूर के देखे, और सीता जी संकोच स्टाइल में राम के साथ कुछ दूरी पे खड़े थे। और सबसे पहले सुपनखा किसके पास गई, राम के पास, और उनसे कहते हैं कि इस संसार में पूरे विश्व में मुझ जैसे सुंदर नारी और आप जैसा पुरुष नहीं मिलेगा, और इतनी बढ़िया जोड़ी रहेगी, अब मेरे साथ तुम शादी करो कि मेरे मैं पूरे ये पूरे वन का राज मैं हूँ, यहाँ मेरा एक छत्र राज चलता है ना, हम दोनों पति पत्नी बन करके और आनंद उठा करके यहाँ पर रहेंगे। प्रस्ताव किया, भगवान राम ने कहा कि हे सुंदरी, और सुंदरी तो नहीं थी लेकिन कहना पड़ रहा है, कि हे सुंदरी, सुंदर नैनों वाली, भगवान व्यंग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, उपहास है, उपहास कर मांग कि मेरी तो पत्नी है ना, मेरे जो भाई हैं आप उनके पास चले जाओ। तब जो शुपंका थे सीता जी को देख करके, क्योंकि स्त्रियां दूसरे स्त्रियों के देख नहीं सकती, इसलिए स्त्रियां का दूसरी स्त्री की जो सुंदरता है वो देख नहीं सकती, है ना, वो होता वो नेचुरल हेट था। उस सीता जी को देखते ही उसको घृणा हो गई, कहते थे काली क्वालिटी है, सीता जी को बहुत वैसा बोलते कि काली क्वालिटी अच्छी नहीं है, है ना, वो बोलती है बाद में बोलेगी। अब आया लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी भी खूबसूरत है, खूबसूरत हैं, है ना, उसने लक्ष्मण जी कहा कि देखो तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा खूबसूरत लगते हो, है ना, ऐसा बोला, और तुम्हारा भाई तो थोड़ा सांवला है, है ना, लेकिन तुम तो बहुत गोरे और खूबसूरत हो, और तुम्हारे में तेज रोष दिखाई दे रहा, तुम्हारा तेज तर्रार दिख रहे हो, हमेशा एक जोश में रहते थे। लक्ष्मण जी ऐसे कर, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मृगनयनी, हाँ सुंदरी, है ना, मेरे साथ शादी करके तुम दासी क्यों बनना चाहती हो, मैं तो प्रभु का दास हूँ, है ना, अगर आप उनके साथ शादी करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, मैं तो उनका दास हूँ, तुम नौकरानी बन के क्यों रहना चाहती हो, आप उन्हीं के पास जाइए। अब फिर वो राम के पास गई, तो भगवान राम ने फिर उसको कहा कि नहीं नहीं हमने व्रत रखा हुआ है, है कि जब एक पत्नी है तो हम दूसरी के साथ शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। वो फिर लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी फिर जो है उधर इशारा कर दिए, तब वो समझ गई कि ये दोनों भाई हमको बेवकूफ बना रहे हैं, और इसका मूल जड़ किसकी वजह से हो रहा है, सीता की वजह से, कई अगर हम सीता को खा जाती हूँ मार करके तो सब हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो सीता जी को मारने के लिए, खाने के लिए अपने विकराल रूप में करके दौड़ी सीता जी की ओर, सीता जी डर गई, कहे कि इस सारी समस्या का जो जड़ है, जो हमारी शादी में सबसे बड़ी बाधक है, ये जो है सीता है, तो इसको मैं पहले खत्म करती हूँ। तो जैसे ही दौड़ी, लक्ष्मण जी ने तत्काल तलवार से उसका नाक क्या कर लिया, काट दिया बड़ी तेजी से, और नाक काटते हुए चीख पड़ी चले, और नाक का जो खून बहना शुरू हुआ उसको पकड़ करके भागी वहां से। अब भगवान राम और लक्ष्मण देखते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चले गए, और दौड़ करके कहाँ जाती है, खर दूषण के पास और त्रिशिरा के पास। वो दोनों बहुत ही बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे कि जैसे ही शुपंखा का दशा देखा तो कहा किसने किया ऐसा, तो कहा कि दो भाई आए हुए हैं जिन्होंने, जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, तो देखने में तो बहुत ही सुंदर सुकोमल लगते हैं लेकिन उनका हृदय बड़ा कठोर है, और उनके साथ एक स्त्री है जिसका नाम सीता है, उन्होंने मेरी नाक काट ली, तो कहे इतनी हिम्मत, खर दूषण गुस्सा करके कहे इतनी हिम्मत, तो 14 बड़े बहादुर राक्षसों को के साथ शुपंका को भेजा। तो जी बड़े भयानक राक्षस जो है, 14 राक्षस अपना सब अस्त्र लेकर के जब आए, भगवान राम दूरी से देखा, लक्ष्मण जी कहा कि सीता जी को एक गुफा में ले जा करके आप रहो, कुटिया से बाहर एक गुफा थी पास में, है ना, वहाँ रहो, सीता जी की सुरक्षा करो, मैं अकेले ही इन सब राक्षसों को मैं संभाल लूंगा। और 14 राक्षस आए, है ना, और भगवान जानते कि सब चारों तरफ से घेर लिए भगवान राम को, है ना, तो कहे क्यों नाक काटा, अब हम तुमको हम लोग भेजेंगे, है ना, और चारों तरफ से जो है 14 थे सब एक साथ ही आक्रमण किए। भगवान ने क्या किया, एक बाण निकाला, अब भगवान जब एक बाण मारते थे तो जितने लोग रहते उतने बाण उसमें से निकल जाते थे, एक बाण से 1000 तीर भी निकलते थे, 14 लोग थे, 14 बाण से उनके क्या किया, काम तो माफ कर दिया। उनको मरते ही सुपंका पीछे देख रही थी, फिर भाग के डर के मारे दौड़ी, कितने भयानक राक्षस को एक बाण से मार दिया, जन्म इनको मार डाला, अकेला आदमी। तब जो है खर, दूषण और तीसरा, ये तीनों भाई है ना, बड़ा भयानक 14,000 सैनिक। देखिए आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति से लड़ने के लिए 14,000 सैनिक है ना, इससे पता चलता है कि कितने कमजोर हैं, है ना, इससे क्या पता चलता है, यही ना, आप खुद सोचिए इस बात को, एक आदमी के लड़कर तुम बहादुर हो तो अकेले आओ, जब तुम्हें पता है कि एक है या ज्यादा दो हैं, है ना, और तुम 14,000 सैनिक भी हाथी घोड़ा पैदल सब प्रकार की सेना लेकर के, तो इससे एक तरह से उनकी कमजोरी नजर आती है, ये आप लोग समझ रहे हैं नहीं बात, ये सच्चाई है, है ना, 14,000 सैनिक लेकर फिर ए डिंग हाँकना के भी तुमको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब जाके बोलने लगे। लेकिन जब खरदूषण नजदीक आए, राम को देखा, तो भगवान राम की मनोहर छवि से प्रभावित हो गया। उसने कहा, अपने मंत्री से बोला, इन दोनों इनसे बोलो कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये मारने के लायक नहीं दिख रहे, इनको हम कैसे मारें, है ना, भगवान की मनोहरता से प्रभावित हो गया। भगवान ने फिर उसको ललकारा कि ये सब बहाना नहीं चलेगा, है ना, अब जब युद्ध करने के लिए आए हो तो युद्ध करो, है ना, तो कहे कि ये देखने तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है लेकिन बहादुर भी लगता है, है ना, तो खर, दूषण और तीसरा 14,000 सैनिकों के साथ जब युद्ध हुआ, जानते हैं ये 14,000 ऐसे सैनिक थे जो कि अस्त्र से मारे ही नहीं जा सकते थे। अब बताइए भगवान मारे तो कैसे मारे, बाण से, तीर तलवार से मारे, कि उनको ऐसा वरदान था कि कोई अस्त्र से नहीं मारे जाएंगे, मरेंगे तो आपस में अपने में ही लड़के मर जाएंगे, लेकिन वो जानते थे कि हम आपस में क्यों लड़ेंगे इसलिए नहीं मरेंगे, ऐसा था, समझ में क्या समझा, उनको उन्होंने वरदान लिया था कि मैं किसी अस्त्र से मरूंगा नहीं, राइट, और अगर हमारी मृत्यु हो तो कैसे होगी, जब हम सारे आपस में लड़ेंगे तभी हम मरेंगे, लेकिन हम आपस में लड़ेंगे ही क्यों, तो चूंकि हम आपस में लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे ही क्यों, नहीं मरे, ऐसा उनके दिमाग में था। लेकिन जब 14,000 सैनिक लड़ने के लिए आए, भगवान सब जानते थे इनकी कि भगवान का नाम क्या है, त्रिकालज्ञ, भगवान सबके मन की बात जानते हैं, गीता में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, यही राम जब स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो जानते क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं कि अर्जुन मैं सबके दिल की बात जानता हूँ, किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ, तुम मनुष्य हो, तुम जीवात्मा हो, तुम सिर्फ अपने मन की बात जान सकते हो, लेकिन मैं सबके मन की बात जानता हूँ, ऐसा भगवान, तो भगवान सब जानते थे। तो भगवान ने फिर जितने सैनिक आए थे, ऐसा भगवान ने अपना चमत्कार कर दिया कि 14,000 जो सैनिक थे सबको राम दिखाई देने लगे, है ना। सबको राम माने हर सैनिक एक दूसरे को राम दिखाई देता है, इसीलिए वो आपस में मर गए लड़ करके, क्योंकि सब क्योंकि उसको राम दिखाई दे रहा है तो दूसरा उसको भी उसको राम दिखाई दे रहा है, आपस में लड़कर मर गए 14,000 से। भगवान ने एक चमत्कार कर दिया कि सबको राम ही दिखाई दे रहे थे। चूंकि वो मारने किसको आए थे, राम को मारने आए थे, और जब सबको राम दिखाई दे रहे थे वो सोच तो सोच रहे कि राम को मार रहे हैं, वो अपने को ही मार रहे थे सब एक दूसरे को, कि उनको ऐसे ही उनकी मृत्यु थी। तो आप कितनी भी योजना बना करके बचने का प्रयास करें, है ना, राक्षस लोग वरदान ले लेकर के ऐसा जो है योजना बनाते हैं अमर रहने के लिए, लेकिन भगवान के पास सबकी काट थी। जैसे शत्रुघ्न में प्रहलाद महाराज के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उनकी क्या योजना थी कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, यही योजना थी ना, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न मनुष्य मरूं न पशु से मरूं, भैया किससे मरूं, अरे घुमा फिरा करके नहीं मरूं का वरदान मांग लिया। लेकिन भगवान सारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए हिरण्यकश्यप क्या कर दिया, वध कर दिया। आपको सबको स्टोरी पता है। तो भगवान के आगे किसी की चालें चलती नहीं है। महाभारत युद्ध में भी ऐसा हुआ, शकुनि मामा और दुर्योधन कर्ण और दुशासन ये सब मिल करके कितनी चालें चलें, राइट, लेकिन सबका काट किसके हाथ में था, भगवान के हाथ में था, क्योंकि अपने भक्तों की सुरक्षा का वचन दिया था, पांचों पांडवों को कुछ नहीं होगा, है ना, ये वचन कुंती महारानी को दिया था। इसीलिए भगवान ने क्या किया, पूरा महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया, अब पांचों पांडव बचे के बचे रह गए। क्यों, किसकी सुरक्षा कवच, स्वयं भगवान है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये 14,000 सैनिकों का वध हुआ। फिर और 1,500 कितने सैनिक उनके पास थे, एक एक कर फिर पहले युद्ध हुआ तीसरा का, उसका नाम ही तीसरा था, तीन सिर जिसके ऊपर उसको त्रिशिर कहते हैं। तीसरा का वध किया, फिर दूषण आया, बहुत भयानक युद्ध किया भगवान राम के साथ, और उस युद्ध में भगवान ने उसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मारा। फिर कौन बचा, खर, हाँ। अब जब खर आया तो उसको भी भगवान ने क्या किया, खत्म कर दिया। तो खर दूषण और तीसरा जैसे ही मारे गए, है ना, तब जो है हड़कंप मच गया, वो जो सुपंखा थी वो तो घबरा गई कि एक राम खर दूषण को मार दिया, पूरी सेना मार गई, इतने बहादुर जो डी मारते थे वो तो घबरा ही गई। एक राक्षस था जिसका नाम अकंपन था, और डर के मारे भाग गया था लंका, है ना, और जा करके रावण से बोला कि खूब नाच गाना देख लो यहाँ पे दरबार में, अब आपकी मौत नजदीक आ रही है। कहीं क्या हुआ अकंपन, क्या हुआ, बताए कि मैं जो देख करके आ रहा हूँ, है ना, अगर मुझे दंड नहीं देंगे, अगर हमें दंड नहीं देंगे तब मैं बताता हूँ क्या हुआ। कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा आपके भाई जो आपके समान बलवान थे खर दूषण, है ना, उनको तो चुटकी में से मार दिया, 14,000 सेना को एक राम ने खत्म कर दिया। तो रावण क्या क्या सारे देवता भी आए थे क्या उसके साथ कि नहीं एक अकेला तो कहे अच्छा तो कहे क्या करना चाहिए कि अभी इसी वक्त जो है उसके पास अगर राम को तो आप युद्ध से पराजित आप ऐसे नहीं कर सकते तो कहे क्या करें क्योंकि राम जब अकेले खर दुश्मन को मार सकता है 14,000 अपने भाई का भी सहयोग नहीं लिया अकेले तो उससे आप युद्ध नहीं कर सकते लेकिन कंपन ने कहा कि अगर राम को मारना चाहते हैं तो एक उपाय है क्योंकि हम लोग तो राक्षस हैं छल कपट करने मास्टर हैं तो छल किया जाए कपट किया जाए और वो छल कपट क्या उसने बताया कि राम की एक पत्नी है सीता जो कि बहुत ही सुंदर है ना रावण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी स्त्रियां थी है ना तो उसने बताया कि आप किसी तरह से अगर उस स्त्री उनकी स्त्री को अपहरण कर लें है ना तो बिना सीता के राम खुद ही मर जाएंगे तड़प तड़प करके उसके वियोग से है ना और इतने कमजोर हो जाएंगे टूट जाएंगे तभी आप मार सकते हैं इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है जब इतना कंपन ने कहा ठीक है तब उसी वक्त जो है कंपन किराए को मान करके रावण जानते किसके पास गया मारीस के पास अपने मामा मारीस के पास जब मामा मारीस के पास गया रावण तो रावण अचानक पहुंचा था कोई योजना नहीं थी कोई सूचना नहीं थी मारीस पूजा पाठ में लगा हुआ था मारीस वास्तव में भक्त जैसा बन गया था भक्त जैसा बन गया था बड़ा पूजा पाठ कर रहा था जानते किसके डर से राम के डर से जब रावण पहुंचा तो उठ के खड़ा हो गया कि आप अचानक कैसे आए अचानक आए जरूर कोई इमरजेंसी को कोई कार्यक्रम है तब रावण ने पूरी प्लानिंग बता दी कि मैं चाहता हूं कि अगर तुम मदद कर दो है ना तो मैं सीता का हरण कर लूं है ना मारीस ने कहा कि रावण जिसने भी तुम्हें ये सलाह दी है वो निश्चित से वो तुम्हारा मित्र नहीं है शत्रु है और तुम्हारा तो नाश होगा ही अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा तो नाश होगा ही पूरे राजसों का विनाश हो जाएगा इसलिए मेरा आग्रह है कि तुम ये प्लान छोड़ दो ये योजना खत्म क्योंकि भगवान राम का जो बल पौरुष है वो भगवान विष्णु की तरह अकल्पनीय है ऐसा क्यों कह रहा है कि उसने खुद अपनी आंखों से भगवान की शक्ति देखा है कि यही मारीस था विश्वामित्र का यज्ञ जब खंडन करना चाह रहा था तो भगवान ने एक बाण में 800 योजन समुद्र में फेंक दिया था एक बाण से फिर उसने कहा कि देखिए कि रावण भगवान जो राम है उनसे हमारी मुलाकात दोबारा हुई थी है ना और उस समय भी भगवान हमको छोड़ देते मारे नहीं इसलिए मेरी प्रार्थना है तुम अपने लंका में चले जाओ और आराम से अपना आनंद उठाओ ये विचार छोड़ दो तो रावण जो है मारीस की ये राय मान करके वापस चलाया वापस आ करके जानते क्या किया फिर अपने राज दरबार में डांस और संगीत का आनंद उठाने लगा। अब इधर रावण के दरबार में संगीत संध्या चल रही थी, सारे जितने राक्षस थे सब बैठे थे दरबार में, और जो सुंदर नारियां थी है ना राजकुमार, सब डांस करते, संगीत संध्या, दारू पी रहे हैं, सब ऐसा सीन चल रहा था है ना। उसी समय कौन पहुंची? सुपंका पहुंची। सुपंका जाते ही जिस तरह से चीखी चलाई, रावण को डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि रावण से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि विधवा उसी ने बनाया था रावण। उसने कहा कि रावण अब तुम्हारा इनास डांस जो खत्म हो जाएगा है ना, ये तुम जो दारू की बोतल पी रहे हो, मस्ती ले रहे हो, अब चंद दिनों का मेहमान रह गया है, कि तुम्हारा मारने वाला अब तुम्हारे पास धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने इतना धिक्कारा, इतना धिक्कारा, कहे तुम मदिरा में है ना, और इतने डूब गए हो इंद्र तृप्ति में कि तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है ना। तो मैं तुम्हारी बहन हूं, देखो तुम्हारी बहन हो करके अब मेरी नाक कट गई, तब मेरी नाक कटना मतलब तुम्हारी नाक कटना, क्योंकि मैं किसकी बहन हूं? आपकी बहन हूं। क्योंकि उसने कहा मेरा नाम नहीं लिया, करे आप ही का तो नाम लिया। तो खरदूषण है ना, कि खरदूषण को तो एक राम ने ही मार दिया, तब रावण डर गया कि खर दूषण मौसम बनवंता उन्हें कुमारे बिन भगवंता, कि खर दूषण तो मेरे समान बलवंत है, भगवान स्वयं भगवान के बिना उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन कहा कहे कि देखो तुम वहां पे क्या करने गई थी? सुपंका से पूछा उसने, तुम्हें कैसे, तुम वहां पहुंची कैसे? तो कहे कि उनके पास, सुपंका देखो झूठ बोल रही है, कहे कि उनके पास बहुत ही सुंदर एक स्त्री है जिसका नाम सीता है, मैं उसकी सुंदरता से बड़ी प्रभावित हो गई, और मैंने सोचा कितनी सुंदर जो खूबसूरत स्त्री है वो तुम्हारे भाई के पास रहनी चाहिए। ये नहीं कहे कि मैं अपने ले गई थी, वो कहती है आपके ले गई थी, लेकिन हमने जब प्रयास किया, आपका नाम लिया, उन लोगों जो छोटा वाला भाई है बहुत तेज तर्रार है, लक्ष्मण को छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी, ऐसी दुर्दशा करी। तब वो गुस्सा हो गया, अरे भैया ये जो स्त्री है, अभी तक तुम्हारे पास जो करीब 4-5 हजार स्त्रियां उसके पास थी, क्योंकि जिस राजा को पराजित करता था उसकी कन्या को लंका ले आता था, भोगता था, ऐसा रावण करता था, बड़ा अत्याचारी था। तो इस तरह से तो कहिए सीता जी किसी तरह से तुम लेके आ जाओ। अब उसके दिमाग में अकंपन ने बात भर दी थी सीता, अब यहाँ पे सीता की सुंदरता, अब उसके दिमाग में ठान लिया अब सीता जी को हरण करना ही पड़ेगा। अब दौड़ करके फिर किसके पास जाता है? फिर मारिच के पास जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग, जब मारिच के पास दोबारा गया, अब देखिए दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। इधर रावण जो है सीता जी को हरण करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए मारिच के पास जाता है। अब मारिच से योजना बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है मारिच, सिर्फ ऐसा हिरण बन जाओ, क्योंकि सीता जी को हिरण बहुत पसंद था, जंगल में रहते रहते हिरण, कि जो सोने का मृग है, ऐसा मृग जो अकल्पनीय हो, कल्पना से परे हो, कभी देखा ही नहीं हो, और जिसको देखते ही जो सीता जी के लोभ में आ जाए, लालच में आ जाए, किसको हमको चाहिए चाहिए, इतना खूबसूरत हिरण बन करके तुम जाओ, बिल्कुल स्वर्ण मृग, सोने का मृग, सुंदर स्वर्ण का मृग बन करके जाओ। क्योंकि तुम ही हो जो इस कपट में मास्टर हो। तुम जैसा चाहते हो वैसी आवाज निकाल सकते हो। उसने बोला कि जब राम तुम्हें मारने के लिए जाएंगे है ना, तो तुम लक्ष्मण का नाम लेना और सीता का नाम लेना, ताकि वो लक्ष्मण भी इधर आ जाए, है ना। ऐसी प्लानिंग कर रहे थे। अब देखिए, रावण अपनी चाल चल रहा था, तो भगवान राम भी सुपर मास्टर निकला, ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा। भगवान राम ने जानते क्या किया, लक्ष्मण जी जब कुटिया से बाहर चले गए, कुटिया से जब बाहर चले गए पुष्प चयन कर लेके फूल उगर लाने के लिए, तो भगवान सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, आपको तो मालूम है कि संसार में किस ले आया हूं, अब वो उस घड़ी आ गई है, इसमें आपको एक सहायता करनी पड़ेगी कि जब तक हम रावण का सहित सारे राजसों का हम वध नहीं कर देते, तब तक आप स्वयं किसके पास रहिए, अग्नि देवता के पास रहिए, अग्नि में प्रवेश कर अग्नि देवता के पास हो जाइए, और जो छाया सीता है ना, यहाँ पे रहिए। क्या ठीक है, देखो दोनों तरफ से कपट की चाल चल रही है, उधर नकली हिरण इधर नकली सीता, साथ सच ही नहीं सच, एक दृश्य था। लक्ष्मण जी जब आए, उनके आने के पहले सीता जी अग्नि देवता प्रकट हुए, अग्नि देवता को से कहा कि क्योंकि सारे देवताओं के राजा तो स्वयं भगवान ही हैं, तो ये मस करके फिर साक्षात सीता वहां पे बैठ गए। लेकिन ये बात बिल्कुल पता नहीं चला किसको, लक्ष्मण जी को, सिर्फ सीता जी जानती थी और भगवान राम जानते थे। ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी यहाँ बताए कि छाया सीता को रावण, तो ये दृश्य हमला। उधर जो मारीस था है ना, मारीस फिर भी समझाया मारीच, अंतिम समय तक के समझाता रहा कि इस विचार को तुम त्याग दो, क्योंकि परम प्रभु इतने महान हैं है ना, कि ये छल कपट में फंसने वाले नहीं हैं, अब इससे क्या होगा कि पूरे राक्षस का विनाश हो जाएगा। अर्थात वो पूरा समझाने के प्रयास किया, लेकिन रावण इतना कामातुर था, इतना अहंकारी था, इतना काम वासन में गिरा हुआ था, उसने मारी से कहा कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त मारूंगा। अब मारीस, तुम्हारी मौत अब पक्की हो गई है, या तुम मेरे हाथ मारोगे या तो राम के हाथ मारोगे, अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम किसके हाथ मारे जाओगे। फंस गया मारीस, क्योंकि इधर कुमार उधर खाई, उसकी मौत निश्चित, अब वो कृपा लेकर के इतना घूर करके रावण दुष्ट था ही है ना, जब इस तरह से दम दे कर दिया कि तुम्हारी मौत निश्चित है इसी वक्त, या तुम मेरे हाथ मारे जाओगे या तुम कपट में बन करके राम के हाथ मारे जाओगे। अब मारी तुम्हारी मृत्यु पक्की हो गई है, अब तुम्हें सेलेक्ट करना है किसके हाथों मरना है। तो मारीस ने क्या चुनाव किया, उसने मन में सोचा कि जब मेरी मौत निश्चित है तो हम प्रभु के हाथों से क्यों न मरे, निर्णय लिया। ये बताया गया है, तो निर्णय लिया, उसने सोचा कि इसी बहाने हम प्रभु का क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। बहुत दिन हो गया, अब वो समझ गया कि लगता है प्रभु इसीलिए मुझे उस वक्त नहीं मारा था, ये सही वक्त है मारने का, अब हमारी मौत क्या होगी निश्चित होगी है ना, तो अगर मरना ही है तो हम प्रभु के हाथों जा करके मरें, इस नीच दुष्ट के हाथ हम क्यों मरें, जिसके मरने से नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर मरना है तो प्रभु के हाथों मरे, कम से कम उनके धाम में तो जाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करके मारीच चला। रावण क्या किया है ना, वो जो रावण था वो भी अपना रथ लेकर के गया कुटिया के पास है। इधर भगवान राम लक्ष्मण और सीता कुटिया में बैठे हुए थे है ना, और कुछ काम कर रहे थे है ना। राम लक्ष्मण आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, सीता जी कुछ काम में लगी हुई थी है ना। सब बड़ा खुश वातावरण चल रहा था, बिल्कुल वातावरण पूरा शांत है ना चल रहा था। और उसी समय जो रावण था कुटिया के कुछ कुछ दूरी पे अपना रथ जो है अदृश्य कर दिया था, छिपा दिया था है ना। और स्वयं जो है एक साधु का वेश धारण कर लिया है ना, और इंतजार करता रहा। और इधर जो मारीच था उसने अपना वेश बनाया और इतना सुंदर मृग बना हो है ना कि अद्वितीय अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं, कितना सुंदर है ना। अब पूरा शरीर जो है सोने का, जो चमड़ी उसकी होती है बाल के, सुनहला बाल सुंदर बन करके, और जो उसमें चितकबरा दो धब्बे होते हैं बिल्कुल चांदी की तरह, तो चांदी और सोने का इस तरह से मिश्रण करके बहुत ही सुंदर हिरण बना। उसकी जो सिंगे थी एकदम सोने की, सब चमकता हुआ, और उसका एक अलग चमक निकलती। और इस तरह से, क्योंकि जो हिरण की जो आँखें होती हैं है ना बहुत खूबसूरत होते हैं है ना, तो इस तरह से अपनी आँखों से पलकों से और सीता जी को इस तरह से आकर्षित कर लिया। और जानते हो सीता जी कुटिया थोड़ा सा बाहर आकर के कुछ काम कर रहे थे, और वो वहीं पे चरते 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 है ना, और उसका सारा निशाना किस पर रहता था, घास थोड़ी चर रहा था, वो तो चरने के बहाना कर रहा था। अब अपनी आंखों से किसकी ओर देख रहा था, सीता जी का। अब बार बार सीता जी अगर उधर मुख करती थी, क्योंकि वो तो बिजी थी है ना, तो सीता जी उसको एक बार देख लें इसके लिए वो चरते थे काफी नजदीक पहुंच गया है ना। तभी एकाएक सीता जी की नजर उस स्वर्णमृग के ऊपर पड़ी। स्वर्णमृग देख करके, क्योंकि सीता जी अयोध्या से चल करके पंचवटी तक आई है ना, और इतने जंगल में इतने हिरण पशु पक्षी उन्होंने देखे जंगल में चल करके, लेकिन ऐसा हिरण उन्होंने क्या किया, पहली बार देखा। ऐसा हिरण पहली बार देखा कि जो कि देखने में स्वर्ण माने सुंदर, लेकिन उसकी चाल, क्योंकि हिरण की जो चाल होती है बहुत अच्छी होती है, कमर उसकी पतली होती है, तो इस तरह से वो बड़ी स्टाइल से चलता था, क्योंकि उसको जो है सीता को आकर्षित करना था, तो ओवर स्टाइल मार रहा था मारीच। तो सीता जी ऐसे हिरण से बड़ी प्रभावित हो गए, उन्होंने तुरंत दौड़ करके राम से कहती इधर आइए इधर आइए, ओ देखो इतना सुंदर हिरण तुम्हें पहली बात थे। मेरे प्रभु आप मेरे ऐसे स्वामी में कितने भाग्यशाली हो कि मैं जो भी इच्छा करती हूँ आप पूरा कर देते हैं, तो मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि ये सोने का जो मृग है स्वर्ण मृग आप मेरे लाइए, क्योंकि इसकी जो छाल है ना, इसकी छाल पर हम लोग बैठ करके पूजा पाठ करेंगे, मृग छाला जिसे कहते हैं, मृग छाल पर हम चाहते हैं कि किसी तरह इसको जिंदा पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा है ना, इसको मैं अपनी कुटिया में पाल करके रखूँगी है ना, ऐसा करें। इतने में लक्ष्मण जी की कभी देखा है ना, लक्ष्मण जी पर कह कि यहाँ पे से जो राक्षस भयानक राक्षस होते हैं, भेद बदलते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कभी सोने का मृग होता है ना। भगवान राम पहचान गए, वो जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हे सीते, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हर पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पति क्या करना चाहिए, पत्नी का इच्छा पूरा करना चाहिए जहां तक हो सके। शिष्टाचार है कि पत्नी अगर कोई इच्छा करती है तो पति का कर्तव्य होता है कि इच्छा करे। तो भगवान राम पति अच्छे पति हैं, है ना, और एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सीता, हाँ मैं भी लाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे जिंदा या मुर्दा लेकिन चाहिए मृग। ठीक है, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, सीता जी को छोड़ना मत किसी भी तरह से, अकेले इनको मत छोड़ना, है ना, और इनका ध्यान रखना, मैं इसको लेकर के आता हूँ। जैसे ही भगवान तीर लेकर के धनुष को उसके पीछे गए तो एकदम नजदीक था वो हिरण, है ना, लेकिन जैसे भगवान दौड़े उसकी ओर, वो तुरंत जो है ऐसी छलांग लगाई कि हिरण तो जो छलांग लगाते हैं, है ना, हिरण का छलांग तब देखिए जब कोई शेर उनके पीछे पड़ता है, कि जो टाइगर होते हैं, शेर होते हैं ना, वो हिरण का शिकार उनको ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि खाने में कोमल होते हैं, है ना, इससे शेर का हिरण का शिकार बड़ा अच्छा। तो जब शेर तोड़ता है तो हिरण कितनी तेजी से, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो पूरी ताकत लगा करके दौड़ता है। तो उसी तरह जैसे भगवान शेर की तरह छत्री थे, दौड़े उसके पीछे और इतनी तेज छलांग मारा कि मीनों दूर छलांग, क्योंकि एक तो मायावी था, तो इसलिए बहुत तेजी छलांग लगा कर बहुत दूर गया। तो भगवान भी कम नहीं थे, भगवान राम भी जिधर से, अब उसने इस तरह से घुमा फिरा करके कुटिया से काफी दूर लेके गया, अब कभी एकदम नजदीक भगवान राम, क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि इसको जिंदा पकड़े। इसीलिए वो चाहता था कि भगवान दूर चले जाए। जब काफी दूर ले गया तब भगवान राम ने कहा कि अब काफी हो गया इसकी कुलाचे देख करके, अब इसका काम तमाम करते हैं, है ना, कि भगवान तो सब जानते हैं कि कौन है क्या है। उन्होंने एक तीर निकाला, है ना, अपने तर्कश से, और मारिस को तो पहले से मारते आए हैं, है ना, और तीर छोड़ दिया। और जब तीर छोड़ा तब जब मारिस था भगवान की ओर देखा, है ना, और कहा कि इस बाण से तो हम बचने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए वो भगवान को देखते हुए तीर को सहन किया ताकि उसका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। और जैसे ही तीर उसके छाती में लगी तो जो हिरण का जो उसका शरीर था वो क्या हो गया, मायावी था, नकली था, वो खत्म हो गया, भयानक राक्षस उसकी जगह के रूप में गिर गया। जब मारे चेक भयानक राक्षस गिरा तो बड़ी तेजी से उसने कराहते हुए किसका नाम लिया, सीता का नाम लिया और लक्ष्मण जी का, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस तरह से जैसे अब बिल्कुल राम की आवाज में, क्योंकि इसीलिए तो मारी सको, क्योंकि वो इतना कपटी था, इतना छल कपटी था, उसको पता था कि वो आवाज बदलना सर बनना उंगा था, तो बिल्कुल राम की आवाज उससे जो है मैं निकाली, है ना, और सीता जी तक इतनी तेज से चलाए कि आवाज वहां तक पहुंच जाए। और जैसे ही सीता जी को ये पता आवाज सुनी, वो जो है उठ के खड़ी हो गई। और लक्ष्मण जी कहा कि देखो आपके जो भैया है ना, ये किसी मुसीबत में फंस गए हैं, वो कराते हुए आपको पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, लक्ष्मण जल्दी जाओ देखो क्या हो गया। भाभी ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो स्वयं प्रभु हैं, है ना, उनके डर से तो स्वयं काल डरता है, उनको थोड़ी कुछ हो सकता है, है ना, यहाँ सब बहुत मायावी राक्षस घूमते रहते हैं, है ना, इसलिए करने। अब सीता जी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे भैया की ही आवाज़ है, मैं पहचान रही हूँ उनकी आवाज़, वो जरूर किसी कष्ट में है। तो लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते कि देखो भैया का ही वचन, भाई का ही वचन है कि मुझे आपको अकेले नहीं छोड़ना है, अब मैं भाई का वचन नहीं तोड़ सकता है ना। तो कहे कि मैं तो उन्हीं की पत्नी हूँ है ना, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ है ना। लेकिन क्या भाभी ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ चार इतने भयानक राक्षस होते हैं, मैं अकेले आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। तब जो है सीता जी ने बड़ी मार्मिक बात कह दी, कहे कि लक्ष्मण अब मैं समझ गई तुम क्यों नहीं जाना चाहते, अब तुम जंगल में क्यों नहीं आए, वास्तव में तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम खुद मुझे भोगना चाहते हो। जो हो जाएंगे लेकिन मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब तुम्हारी नियत में खोट है, ऐसा सीता जी ने बोला। जब सीता जी ने ऐसा बोला तो असहनीय शब्द बोल दिया कि भाभी आप ऐसा कह रही हैं है ना, मैं तो आपका चरण के ऊपर देखा नहीं आपको और आप ऐसा कह रहे हैं है ना, कहीं कुछ भी हो तुम्हें जाना चाहिए है ना। और ऐसा कह करके फिर लक्ष्मण जी के आके एक रेखा खींच दी जो मशहूर हो गई लक्ष्मण रेखा, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं करना है ना। और कहे कि भाई मैं जा रहा हूँ। अब लक्ष्मण उसी ओर दौड़े जिस ओर से आवाज आई थी। अब इधर भगवान मार करके वापस आ रहे हैं, लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके उधर जा रहे हैं है ना। अब सीता जब लक्ष्मण जी चले गए तब रावण वहीं पे खड़ा था कि रावण ने ये आवाज सुन ली थी, और तो ताक में बैठा था किसी से सीता जी ये लक्ष्मण जी निकले। लक्ष्मण जैसे रास्ता मैंने उधर भागे है ना, अब तुरंत रावण जो है साधु के वेश में आ गया, बिल्कुल गिरुआ वस्त्र, एक सुंदर सा ब्रह्मचारी कपड़ा पहन करके, गिरुआ वस्त्र पहन करके, सन्यास का कपड़ा पहन करके, सन्यासी का साधु सन्यासी बन करके और आ गया, बड़ा माला लपेट रखा था जैसे आज करके फर्जी साधु लोग माला लपेटे रखते हैं चीलम गांजा पीते रहते हैं है ना। ऐसे हमारे प्रभुपाद बोलते हैं कि इसीलिए ऐसे साधु सन्यासियों से क्या करना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए है ना, क्योंकि रावण के भेष में कितने ऐसे साधु घूम रहे हैं, अब कुछ लोग तो जेल में जाकर सड़ रहे हैं है ना। तो हमें इस बड़ा सतर्क रहना चाहिए है ना, क्योंकि किसके हृदय में क्या है कक समझ नहीं सकते। तो वो गिरुआ वस्त्र में आया, तो होता क्या है रावण ने एक ड्रेस इसलिए चुना कि जो वास्तव में स्त्रियां होती हैं इस ड्रेस से बड़ी प्रभावित होती हैं, साधु संत उनको बड़े पसंद होते हैं क्योंकि उनके अंदर भक्ति की भावना भी होती है, पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में भक्ति भावना ज्यादा होती है। तो रावण ने कहा कि अगर हम ये भेष बदलेंगे तो भिक्षा आसानी से मिल जाएगा है ना। और सीता जी के पास भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही कर करके अब बड़ी तारीफ की है ना, उसने सीता जी की सुंदरता के एक एक अंग की सुंदरता को वर्णन करते हुए बड़ी बड़ाई करके और जो है कहा कि आपको भिक्षा, क्योंकि भिक्षा जो है भिक्षा, अरे जो साधु है ये बिना भिक्षा लिए नहीं जा सकता। और उसकी बातों में सीता जी क्या गई आ गई, तो एक टोकरी में फल फूल जो तोड़ करके लाए थे लक्ष्मण जी उसको रावण को देने के लिए, साधु जी को देने के लिए वो ले करके आए। लेकिन बीच में बाधक कौन क्या बन गया, वो जो रेखा खींची गई थी, तो रेखा के अंदर से वो देना चाहते थे। रावण जब उधर देखा तो डर गया कि लक्ष्मण की रेखा क्रॉस नहीं कर सकता था, वो जल के भस्म हो जाता है। रावण समझ गया है, उसने कहा कि देखिए सीते मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता, अगर आपको आशीर्वाद लेना है साधु संत से तो बंधी हुई भिक्षा से जो है अच्छा कि आप आगे आ जाइए। सीता जी उसके सम्मोहन में आ गई है ना, जैसे ही टोकरी लेकर के वे लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं और रावण जानते क्या करते, इतनी तेजी से झपटा है ना, जैसे शेर हिरण पर झपट्टा मारता है। उसने सीता जी का जो हाथ था ना, वो टोकरी जो पकड़ते ऐसे झटका, टोकरी गिरी और पकड़ करके कर तुरंत जो है ऐसे उनको जो है वो उसके पास जो पुष्प जो दिव्य रथ था और बैठा कर और लेकर चलता बना, बड़ी तेजी से सब काम किया उसने। अब इधर जो है भगवान राम वापस आ रहे हैं अपनी कुटिया को, भी लक्ष्मण जी मिले नहीं। और जैसे ही रावण लेके जाने लगा उसे बैठा करके, तो उड़ान थोड़ी सी दूरी पर जब गया तब जटायु मिल गए, वही जटायु, क्योंकि भगवान राम की जो कुटिया थी उसके कुछ ही दूरी पे वो रहते थे। अब उन्होंने चीख और सीता की आवाज़, हे राम हा राम बचाइए है ना, ऐसा वो रोते हुए चिल्ला रही थी सीता जी। तो उनकी आवाज़ जब चीख सुनी तो जटायु जो है तुरंत रावण पर धाव बोल दिया। अब जटायु ने पूरी ताकत लगा, देखो एक गिद्धराज है ना, भगवान की सेवा में इस तरह लग गए कि रावण का रथ या सब तोड़ दिए थे पता है, अपने बड़े पंजों से है ना, और ऊपर से आकाश में उड़ के आते थे और दौड़ करके से पंजा से उसको नोच दिए थे, पूरा छिड़ोड़ खनोच दिए थे, चोंच से पंजे ही उनका औजार था। इस तरह से बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और सीता जी जो जो है जटाओ 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 का भी नाम रहते है ना, अच्छा जटाओ पूरी ताकत लगा दी बचाने के लिए है ना, लेकिन रावण जो था बहुत बदमाश था। आखिर रावण रावण था, उसने क्या किया कि देखा कि इसकी जो ताकत है जटाओ के किस में है, पंखे पे है, अगर पक्षी का पंखा कट जाए तो पंख भी इन पक्षी क्या हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है। तब रावण ने अपनी कृपाण हाँ, उसके पास दिव्य तलवार थी है ना, उसने तलवार से जब जटाओ आकाश मार्ग से उड़ते हुए जब आया एक माने एक फिर मारने के लिए, और उसी समय तलवार से उसका एक पंख जो है काट दिया। तो जब एक पंख कट गया तो अनबैलेंस होकर के जटाओ क्या हो गए, भगवान राम का नाम लेते हुए वो गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। अब रावण जो है फिर संभल करके और अपने रथ पर सवार होकर के लंका की ओर आकाश मार्ग से उड़ना शुरू कर देता है। तो जब उसका जो विमान था एक पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था, तो पहाड़ किसका था, ऋषिमुख पर्वत था, जहाँ पे हनुमान जी और सुग्रीव अपने कुछ प्रमुख बाणों के साथ बैठे थे, वो आपन बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। इतने में उनको आकाश मार्ग से एक रोने चीखने की आवाज़ आई स्त्री की, तो देखा आकाश मार्ग से तो रावण जो है लेके चला जा रहा था है ना। तो सीता जी की जो नज़र थी वहाँ पे पड़ी और देखा कि कुछ लोग वहाँ पर उनको नज़र आए है ना ऊपर से आकाश मार्ग से। तो जो सती अनुसुईया ने जो कुछ कपड़े वस्त्र दिए थे भगवान के सामने और जो खुद वो पहन करके आई थी कुछ आभूषण, और एक कपड़े में लपेट करके नीचे गिरा दिया है ना, और उसको तुरंत हनुमान जी ला करके, जब नीचे गिर गया हनुमान जी ला करके किसको दे दिया, सुग्रीव को, कि इसको रख ले भाई किस्सा है ना, और रावण लेके गया। अब देखिए रावण लेकर के लंका में गया, तो सीधा बताया गया कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण जो है सीधा अशोक वाटिका में नहीं लेके गया है ना, पहले अपने महल में ले गया है ना। तो उस लंका में 32 करोड़ राक्षस निवास करते थे, बहुत बड़ा एक एक महल एक एक पैलेस, वो जानबूझ करके ले गया था अपना भव्य ऐश्वर्य दिखाने के लिए है ना, क्योंकि जानता कि जो स्त्रियों की कमजोरी क्या होती है, भव्य महल है ना, और सुंदर आभूषण सोने गने हीरे मोती जवाहरात ये सब दिखाया भव्य अपने। और उसी के साथ क्योंकि जितने भी राजा महाराजा होते हैं जब महल बनाते हैं तो एक वाटिका भी बनाते हैं है ना, घूमने टहलने के लिए, सुबह उठ करके वो बगीचा में घूमने टहलने के लिए इस वाटिका बनाते हैं, है ना। जैसे नंदन वन है, एक किसकी वाटिका है, इंद्र की, कि स्वर्ग का जो वाटिका है उसको नंदन वन कहा जाता है। हमारे दिल्ली में भी एक वाटिका है, किसका, प्रेसिडेंट हाउस में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुगल गार्डन ये बोलते हैं ना, वहाँ पे बगीचा है। तो जितने राजा महाराजा होते हैं, है ना, जब पैलेस महल बनाते हैं तो अपना जो उनका बेडरूम होता है उसके अटैच जो है एक बाग गार्डन होता है। जैसे कि राष्ट्रपति भवन भी आप लोग जाइए तो एक दरवाज़ा खुलता है जो गार्डन में खुलता है। तो राष्ट्रपति महोदय जब सुबह उठते हैं तो मुगल गार्डन में सैर करते हैं। तो ये जितने बड़े राजा महाराजा हैं सब सबका। तो अशोक वाटिका जो रावण का महल था उसका जो बेडरूम जिसे कहते था शयन कक्ष, जो संस्कृत हिंदी बोलते हैं शयन कक्ष के से अटैच्ड ही था, है ना, अशोक वाटिका, ज़्यादा दूर नहीं था, है ना। तो इसलिए पहले सब दिखा करके और उसने जो है बहुत बनाने का कि जितनी रानियां हैं ये सब के सब तुम्हारी क्या बन जाएंगी, दासी बन जाएंगी, है ना, अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन सीता जितना झाड़ा उसको रावण को, रावण डर गया। तो उसने क्या किया, तब अशोक वाटिका में उनको बैठा दिया अशोक वृक्ष के नीचे। जितनी भयानक भयानक राक्षसियाँ थी सबकी ड्यूटी लगा थी कि इसको किसी न किसी तरह से क्या करो, मनाओ कि मेरी हो जाए। ऐसा क्यों, इसकी भी कहा था। वैसे रावण जो था जबरदस्ती नहीं कर सकता था सीता के साथ, क्योंकि एक बार जब रावण विजयी बनना चाहता था, पूरे विश्व पर एक छत राज करना चाहता था, विश्व विजय के लिए निकला हुआ था, है ना, तो युद्ध करते करते वो थक गया था। तो एक पर्वत पर वो विश्राम करने लगा। तो जब विश्राम करने के लिए बैठ गया उसी समय एक खूबसूरत अप्सरा जो थे, है ना, वो बहुत श्रृंगार कर गए। अप्सराएं तो ऐसे सुंदर होती हैं, और जब श्रृंगार करके निकले तो और सुंदर हो जाते हैं। तो बिल्कुल श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके और वहाँ से उसके रावण के सामने से ऐसे चली जा रहे थे। रावण की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो जैसे ही अप्सरा को देखा अपना हाथ बढ़ा दिया, कहे कि तुम कैसे जा सकती हो रावण के रहते हुए, इतना तुम सुंदर श्रृंगार करके तुम किसके लिए जा रहे हो, रावण बोलता है। तो जो अप्सरा थी, है ना, वो खड़ी हो गई, कह कि रावण मैं तो तुम्हारी पुत्र वधु लगती हूं, और तुम अपने पुत्र वधु से ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो रावण कह रहे कैसी पुत्र वधु जिसको मैं ही नहीं जानता, है ना, ये रिश्ता कहाँ से आ गया, तुम जरूर अपने को बचाने के लिए ये रिश्ता तुम जोड़ रही हो, लेकिन मैं कोई पुत्र वधु नहीं मानता, है ना, कैसे पुत्र वधु, है ना। तब उसने कहा कि आपके जो बड़े भाई सौतेले भाई हैं कुबेर, उनके जो पुत्र हैं नलकुबर, वो हमारे क्या हैं, पति हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, अब मैंने उनके लिए समय दिया है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वास्तव में उनके ले जा रहा हूँ। रावण के नल कुबर की ऐसी तैसी, पहले तुम मेरे पास आओगे, है ना। उसने जबरदस्ती बलात्कार किया उसके साथ, है ना, अब बलात्कार करने के बाद उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, है ना, रावण। तब वो अस्त व्यस्त हो करके जिस तरह से रावण ने उसको छोड़ा था, वो बेचारी अप्सरा, है ना, नल कुंवर की पत्नी, जब नल कुंवर के पास पहुंची तो नल कुंवर आग बबूला हो गए उसकी हालत देखकर कि ये सब किसने किया तुम्हारे साथ, है ना। तो कहा और कौन करेगा इस संसार में, इसमें जो अत्याचारी है रावण। उसने उसी समय जल लिया और श्राप दे दिया कि आज के बाद से रावण किसी भी स्त्री के प्रति अगर जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके दसों से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी, श्राप दे दिया। ये श्राप चारों तरफ फैल गया। इसीलिए रावण मना रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो जानता था कि हम सीता के सामने जबरदस्ती कर नहीं सकते, अगर जबरदस्ती करेंगे तो मारे जाएंगे, है ना। तो ये जो श्राप था ललकुंवर का, इससे जानते क्या फायदा हुआ, जितनी हजारों हजारों रानियां सुंदरियां रावण जबरदस्ती लेके आया था उस पर करके 80-85% रानियां छुटकारा मिल गया, बेचारी चली गई। कि रावण ने सब बोल दिया कि जिसको अपने मन से मेरे साथ रहना तो रहिए, अनाथ भैया चली जाओ, हमको मरना नहीं। तो नलकुंवर के एक श्राप से कितने स्त्रियों का क्या हो जीवन बच गया, आप समझे। और सीता जी को एक बात मान कि रावण कुछ भी करेगा है नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ इस तरह से अशोक वाटिका में सीता जी पहुँच गई हैं। अब यहाँ से स्टोरी यहाँ रुकती है, क्योंकि अब भगवान राम कहाँ पहुँच जाते हैं, मिलते हैं लक्ष्मण जी से। कि जब क्योंकि कुटिया से थोड़ी ही दूर पर जब लक्ष्मण गए है ना, और उसी से भगवान राम वहाँ पहुँचने वाले थे, तो रास्ते में ही मुलाकात हो गई। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे चले आए, तुम्हें तो सीता जी के पास रहना चाहिए था। कि भैया मैं क्या करूं, मैं तो बहुत मान लेके, और डांटने लगे कैसे। तब दोनों भाई दौड़े है ना, और दौड़ करके जब कुटिया में आए तो वहाँ का जो सीन देखा, भगवान राम बड़े दुखी हुए और डांटने लगे लक्ष्मण को कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी भी हालत में सीता जी को नहीं छोड़ना, तुमने क्यों छोड़ा, तुम्हारे वचन। तो कि भैया मैं क्या करूं है ना, मैं तो अंध तक रहा, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी चुभने वाली बात कह दी है ना, अब फिर मुझे आना पड़ा, क्या कर सकता हूँ। अब भगवान राम समझ गए, अब राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही दुखी हो गए, और दुखी हो करके वो सीता जी को खोजने लगे। तो इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि जो भी दिखाई देता है भगवान सीता जी के वियोग में उसी से रोते ही पूछते हैं, किताब मेरी सीता जी को देखा है जाते हुए कहीं, और भगवान को रोता हुआ देख करके जितने पशु पक्षी थे बेचारे रो रहे थे है ना, क्योंकि वो लोग देखे थे सब हिरण उगर, तो उधर जिधर जिधर से गए थे वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन हिरण उगर रोते हुए उधर मुंह दिखाते थे किधर इधर गई है लेकर के, क्योंकि जानवर बेचारे बोल न सकते नहीं थे, ऐसे मुंह से बताते थे। तो इस तरह से दृश्य को देखते ही भगवान उधर की ओर जा रहे हैं। तो जटाऊ के जब घर के पास पहुंचे तो वहां पे जटाऊ करा रहे थे, राम 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 ऐसा कर रहे थे। भगवान ने जैसे जटाऊ की आवाज सुनी दौड़ करके दोनों भाई गए, तो देखा तो बस एक तरह से जटाऊ सिर्फ भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान राम ने क्या किया, जटाऊ का जो सर था वो अपने ऐसे जंघे पर रख करके अपनी गोदी में रख करके कि जटाऊ बताओ क्या हुआ। तब राम ने जो सीता जी के साथ वो बताया कि मैं तो पूरी अपनी शक्ति से, जो शक्ति आपने दी है पूरी शक्ति से मैंने सीता जी की रक्षा करने के, लेकिन जो रावण था है ना वो सीता जी को ले गया था ना, मैंने पूरा ताक लगा दिया था। और इतना कह करके भगवान राम चाह रहे थे, भगवान कहे कि जटाऊ मैं तुम्हें जीवन दान देना चाहता हूँ। जटाऊ ने कहा कि हे प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इसलिए तपस्या करते हैं कि जब वो शरीर छोड़े तो उनके मुंह से आपका नाम निकले, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपकी गोदी में आपके सामने में आपके धाम जाऊंगा, ऐसा अवसर भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीवन दान देने पर, तो मैं इस अवसर को क्यों छोड़ूं स्वामी। और इतना कह करके राम 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 भगवान का नाम लेते हुए जटायु शरीर क्या करते हैं, त्याग देते हैं। हमारे प्रभु इतने महान हैं भगवान राम कि रोने लगे दोनों भाई, और तुरंत लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण लकड़ियां इकट्ठा करो, हम इनका दाह संस्कार करेंगे। वो भगवान राम जो अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाए, आज एक गिद्धराज जटायु जो कि इनके महान भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा में अपनी प्राण दे दिए, उनके लिए भगवान क्या कर रहे हैं, उनका दाह संस्कार अपने हाथों से किए है ना। और इस तरह से है ना भगवान उनका दाह संस्कार करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इससे शिक्षा मिलती है कि देखिए भगवान ने की जो शक्ति है, इस सब भगवान की दी हुई शक्ति है। हमें अपनी पूरी शक्ति से भगवान की सेवा में क्या करना चाहिए, लगना चाहिए। ये जान लीजिए जटायु पूरी ताकत लगा देती। वास्तव में हम सब भगवान के क्या हैं, सेवक हैं। जीव गोस्वामी जी इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि जीवरे स्वरूप है नित्यन कृष्णदास, हमारा शाश्वत स्वरूप है हमेशा भगवान की क्या करना, सेवा करना। हम शाश्वत दास हैं, इसलिए आप सब भक्तों से भी यही अनुरोध है कि ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, कमल दल के समान है। कब कमल दल पर जिस जल की बूंदें ठलठलाती गिर जाती हैं, उसी प्रकार का हमारा जीवन कब गिर जाएगा, हम कब शरीर छोड़ देंगे, हमको पता नहीं है। इसीलिए जो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना, हमें ये जीवन दिया हुआ है, ये अनमोल जीवन हमें किस में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। जिस तरह से जटायु ने लगाया, और देखिए कि भगवान कितने कृपालु हैं कि उनका दाह संस्कार अपने हाथों से किया। इसीलिए भक्त शिरोमणि जब भक्तों की चर्चा होती है तो उस भक्त मंडली में एक नाम किसका आता है, जटायु का भी आता है। इस तरह से जटायु का छोड़ करके भगवान आगे निकलते हैं। जब भगवान जटायु का दाह संस्कार करके आगे निकले, तब एक भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते करते जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने क्या देखा कि विशाल दो हाथ, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से, और ऐसे करके राम और लक्ष्मण दोनों को क्या कर लिया, ऐसे सर्किल मिला दिया। उनको पता भी नहीं चला, वो लोग चले जा रहे थे, लेकिन बड़ी ही धीरे 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 एक हाथ ऐसे आया और ऐसे पकड़ लिया, है ना। जैसे लक्ष्मण राम देखे तो पूरा घिरे हुए देखे, और ये हाथ थे राक्षस का हाथ था, अब बड़ा मजबूत बड़े बड़े नाखून ऐसे 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 पकड़ लिया था, तो देखे तो बड़ा लंबा हाथ था। अब हाथ कहाँ से निकला है वो जगह दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो 8 मील तक हाथ फैला सकता था। जो राक्षस था उसका नाम था कबंध, जो दुर्वासा मुनि के श्राप से राक्षस बन गया था, और इंद्र के वज्र के प्रहार से उसका सिर पेट में घुस गया था, है ना। तब खाना कैसे खाए, है ना, तो ब्रह्मा जी से जो इंद्र से उसने जो प्रार्थना की, तो इंद्र ने क्या, उसका हाथ बहुत लंबा बना दिया, और कहे कि तुम इसी हाथ से जो भी पशु पक्षी जो भी मिलेगा इनको हाथ फैला कर पकड़ पकड़ के अपना भोजन करोगे, है ना। तो उसने कहा कि आप लोग कौन हैं कि बहुत दिन से मैं भूखा हूँ, आज बहुत दिन के बाद मुझे कुछ शिकार पकड़ में आया है, तो मैं तो खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं खाने से पहले नाम जाना चाहता हूँ। तब भगवान कहा कि मेरा नाम राम है और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण का नाम सुनते ही वो जानते क्या होगा, प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि हे राम, जब से इंद्र ने मुझे कहा है कि तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि जो कमन था एक गंधर्व था, एक बहुत खूबसूरत था गंधर्व था, ये तो दुर्वासा के श्राप से राक्षस बना था, कि तुम्हारा उद्धार होगा जब राम और लक्ष्मण के हाथों तुम क्या होगे, मारे जाओगे, तब तुम्हारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, है ना। तो हे राम, बहुत दिन से मैं, इसीलिए जो कोई भी आता था हम पकड़ते थे कि कभी न कभी तो आप भी पकड़ में आओगे, क्योंकि इंद्र का ये वरदान झूठा हो नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि जब भगवान राम और लक्ष्मण आएंगे तो उनके हाथों तुम्हारा क्या है, उद्धार होगा। इसलिए जो भी आता था हम सबको राम लक्ष्मण ही समझ करके पकड़ते थे, लेकिन सब नकली निकलते थे। लेकिन आज आप पकड़ में आए हो, आज का दिन हमारे लिए क्या है, अच्छा है। लेकिन मुझे आप अस्त्र मार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तलवार से लक्ष्मण जी ने उसका काटा, क्योंकि उसको उद्धार करना था। उसने कहा कि मुझे अस्त्र नहीं मार सकते, एक गड्ढा बनाइए और गड्ढे में क्या किए, कदा लक्ष्मण जी ने क्या किया, गड्ढा बनाया और कबंध को पकड़ करके उस गड्ढे में डाल दिया, और डालने के बाद फिर मिट्टी डाली। जब ऐसे किया तब जो है कमंद एक बहुत ही खूबसूरत गंधर्व है ने बन करके, और कहा कि आप कृपा करके यहाँ से आगे निकल के, उसने बताया कि क्योंकि भगवान को ये पता नहीं थी कि हम कहाँ कहाँ जाना है ना, कहे कि हे राम आप जाइए, मतंग ऋषि का एक आश्रम है ना, और वहाँ पे एक भक्ति नाम का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है शबरी, आप वहाँ आगे बढ़िए, है ना। तो कमंद का उद्धार करके, है ना, अब जो है भगवान राम और लक्ष्मण किधर जाते हैं, शबरी की ओर। अब देखिए एक ऐसी भक्ति है ना, कब से इंतजार कर रही थी, और उसके जो गुरु महाराज थे शबरी के, उनका नाम था मतंग ऋषि, वो बेचारे शरीर छोड़ दिए थे अपने आश्रम में, और शबरी इतना प्रेम करती थी अपने गुरु से कि जब गुरु जी की चिता जलने लगी तो शबरी उसमें कूदना चाहती थी, वो शरीर छोड़ना चाहती थी, लेकिन गुरु ने मना किया था, गुरु ने वचन दिया था कि तुम्हें रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक न एक दिन भगवान राम हमारे इस आसन की ओर आएंगे और तुम्हें उनके दर्शन होंगे, इसलिए तुम्हें रहना है। इसीलिए वो नहीं चली, सिर्फ भगवान राम का दर्शन करने के लिए, नहीं तो खुद अपने गुरु के साथ मरना चाहती थी। गुरु ने ही आदेश दिया था कि नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें किसके दर्शन होंगे, प्रभु राम के दर्शन होंगे। तो तब से, जब से गुरु ने शरीर त्यागा है, तब से शबरी क्या करती थी, सुबह रात को 3 बजे उठ करके, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ करके मतंग ऋषि के आसन की ओर जो आने जाने का रास्ता था, वो रोज सुबह उठ करके झाड़ू लगाती थी, जो कंकर थे कांटे थे ये सब हटा देती थी, सब साइड में कर देती थी, और वहाँ पे पुष्प चयन करके वो क्या करती थी, बिखेर देती थी। वो चाहती थी कि जब हमारे प्रभु आएंगे तो उनके पाँव में कंकर और कांटे न गड़ें, फूल बिछा रखती थी। लेकिन रोजाना फूल बिछाती थी, अब फूल सूख जाते थे, भगवान आते ही नहीं थे, है नहीं। और इंतजार कर रही थी, और एक दिन जो है भगवान का इंतजार इतना करती, कहीं भी अगर हवा थोड़ी सी हवा चलती थी तो जो जो पत्ते हैं पेड़ों के वृक्षों के, वो जब फड़फड़ाते थे वो दौड़ के कुटिया से निकलती थी, है ना, कि चलता है मेरे प्रभु आ गए, है ना। इतना कंसंट्रेट था भगवान राम के प्रति उसके मन में। तो प्रभु को पाने के लिए इस तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए कि राम के अलावा वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ इंतजार था, उसको नींद नहीं आती थी, दिन रात सिर्फ प्रभु आएंगे इतना विश्वास, गुरु का विश्वास करके वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रही थी। और वो प्रतीक्षा कर रही थी, और जब एक दिन सुबह उठ करके वो जो है जैसे दिनचर्या उसकी थी, खूब सफाई करके झाड़ू लगा करके, अब फूल ऐसे गेंदे के फूल जो भी फूल थे चुन करके ऐसे खुद अपने हाथों से उस पर जरा रहे थे। इतने में कोई आया, क्योंकि वो तो अपना नज़र जो है जमीन के नीचे ऐसे गड़ाई थी, अब फूल ऐसे कर रहे थे, तो कोई आया तो उसमें कौन थे, कुछ साधु संत थे उसी आश्रम के। तो कहे क्या सबरी, तुम तो रोज आना ऐसा करती हो, तुम्हारे भगवान कहाँ आ रहे हैं। कहे लेकिन तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा ऐसी है कि निश्चित रूप से भगवान आएंगे, और इस तरह से उस वो कहकर लोग चले गए दूसरे रास्ते से, क्योंकि वो रास्ता किसके लिए उसने फूल बिछाए थे, भगवान। कुछ देर के बाद वो फिर वो पुष्प चरण में लगी थी, है ना, इतने में फिर उनको किसी के आने की लगी। तीस बार उसने नहीं देखा कि जान दे फिर कोई आ गया होगा, है ना, और इससे कौन है, भगवान आ गए थे, भगवान राम और लक्ष्मण आके खड़े हो गए जहाँ तक बैठी थी, है ना। और वो लोग उठे ने, और फिर उसने जब चरण देखे तो ऐसा चरण उसने कभी देखा ही नहीं था। तो चरण से देख करके और जैसे कल तक भगवान को देखा तो पागल हो गई सवरी कि मेरे प्रभु आ गए, शब्द नहीं निकले सवरी के, है ना, कि इतने दिन से भगवान ने का जो प्रतीक्षा किया आज भगवान उसके सामने खड़े हो गए। और तुरंत उठ के खड़े हो गए, अरे आइए प्रभु आइए, है ना। और उसी पुष्प के रास्ते से कि कुटिया थोड़ी दूर पे थी, है ना, और कुटिया में ले गए, उसके पास जो कुछ था एक कुश की चटाई थी, है ना, और ला करके बिछा दे कि मेरे प्रभु आप बैठिए, है ना। और बार बार अंदर जाती थी कुटिया से, निकल कर आती थी, मान एकदम प्रेम में विवल हो गई थी। इसको विवल शब्द कहते हैं, पागल नहीं कहेंगे, विवल हो गई थी प्रेम, क्योंकि जो जिसका इंतजार था अगर वो चीज़ सामने आ जाए तो आदमी बिहोल हो जाता है, हाँ, तो प्रेम में बिहोल हो गई, वो क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, है ना। प्रभु बैठे, भगवान बड़े ही आनंद के साथ मुस्कुराते हुए बैठ रहे। लक्ष्मण जी को थोड़ा अटपटा सा रहता है क्या है, है ना, वो बैठे थे, है ना। इतने में वो दौड़ करके एक को लेके आई, डलिया टाइप का, है ना, मतलब उसमें बेर चुन चुन कर रखे थे कि हे प्रभु ये बेर मैं आपके लिए कब से तोड़ तोड़ करके, बहुत मीठे हैं कि मैंने चक चक करके रखा। ओ भाव में आ करके कि हमारे प्रभु को बैर खट्टे न लगे इसलिए स्वयं चक करके अब मीठे बैर को ही रखती थी, है ना। यह भावना कि भगवान जो है किस तरह से भावना को देखते हैं, और मैं 56 प्रकार का भोग व्यंजन से प्रभावित नहीं होते। अगर आप सबरी के झूठे बैर भी खिलाते हैं तो भगवान प्रेम से क्या करते हैं, खाने लगते हैं। उसने तुरंत जो है बैर एक फिर लिया, देखा, कहा कि पर एक खाई, है ना, क्योंकि पहले से चक करके रखा था, है ना, खाए। अब भगवान बेर को देखते थे और लक्ष्मण जी की ओर देख करके खाते थे, बहुत आनंद। भगवान आंख मूंद करके उसे पकड़ाते जाती थी और भगवान खाते जाते थे। और जब लक्ष्मण को पकड़ाती थी तो लक्ष्मण जानते क्या करते, फेंकते थे, वो सोचते थे कि इसका झूठा प्रभु ही खा सकते, प्रभु खाए। और उसके बाद खाने के बाद भगवान बड़े तृप्त हुए, है ना, कहा सबरी आज तुम्हारा जीवन क्या हो गया, सार्थक हुआ। सभी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन हो गया, सिर्फ आपके दर्शन के लिए मैं यहाँ पर रुकी हुई थी, अब मैं रहना नहीं चाहती, इसलिए एक चिता तैयार की गई है ना, और उस चिता में भगवान के सामने ही शबरी अग्नि में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, अब भगवान के सामने और भगवान के धाम शबरी क्या हो जाती है, चली जाती है। और इसके बाद है ना, शबरी जाने से पहले ये बोल के गई थी कि हे प्रभु, अब आप आगे का जो रास्ता है कहाँ जाएंगे, ऋषिमुख पर्वत आएगा जो पंपा सरोवर के पास है, वहाँ पे सुग्रीव कई बहादुर बाणों के साथ रहते हैं, आप उनके पास जब जाएंगे तो वो आपकी सहायता करेंगे सीता जी की खोज में, तो प्रभु आप आगे बढ़िए। अब आगे कथा कल आरंभ होगी, किस तरह से भगवान अब आगे प्रस्थान करेंगे, अर्थात किष्किंधा कांड की जो कथा आप कल शुरू करेंगे। ना उसका कोई जाएगा नहीं,
कृपया बैठे रहिए, प्रसाद बहुत है, आरती जब तक नहीं हो जाती कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा,
अपराध लगता है
ये, जैसे प्रोजी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराध है, कथा व्यास बैठे हैं, आरती हुई नहीं है, आप सीट छोड़ के जा रहे हैं, 5 मिनट की बात है। सबसे पहले तो आज की कथा के लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद,
कथा भी सुंदर कांड की है, अच्छा रहे।
दोपहर 12:30 बजे हम प्रसाद होगा, उसके बाद 2 घंटे के करीब यात्रा निकाली जाएगी, और शाम को जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि सुंदर कांड का पाठ होगा, और वो भी एक विशेष पाठ है, सुंदर कांड तो जान है रामायण की, तो आप सभी से अनुरोध है कि समय पर बता कर कथा का आनंद लीजिए। 15 तारीख को सुबह जो है अभिषेक होगा, उसके बाद प्रसाद होगा, शाम को पंडाल के अंदर रामलीला नाटक प्रस्तुत किया जाएगा वेंकटप्रिया द्वारा, और 9 बजे प्रसाद होगा, तो रामनवमी का विशेष जो आयोजन है उसका भी आप आनंद लीजिए सभी के साथ, सभी मित्रों के साथ आकर। अभी हम प्रभु जी का दोहा हरि बोल बोल के प्रारंभ करेंगे, हरि बोल हरि बोल,
श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम,
श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
कंदर्प अंगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम,
कंदर्प अंगणित नील नीरद सुंदर,
पतित मान करित करुचि शुचि नाम जनक सुतावरम
पट पीत मानव तरित ऋषि शुचि नाम जनक सुतावरम
भयु दीन बंधु दिनेश दानव तैत्य वंशन कंदनम
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दुष्ट जननिक दानव
रघुनंद आनंद कंद कौस चंद्र दशरथ नंदनम
रघुनंद आनंद कंद कौस चंद्र दशरथ नंदन
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
आजान भुज शर चाप धरि संग्राम हित कर भूषण
अजानु भुज सर साप धर संग्राम हित कर भूषण
इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुन्मन रंगनम
वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम
मम हृदय तंज निवास करु आदि कल तल तंजनम
मम हृदय तंज निवास करु आदि कल तल तंजनम
सहज सुंदर सावर
मनु जाही राही
सावर
सहज सुंदर सावर
करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर
करुणा निधान सुजान शील जानत रावरो
भांति गौरी आशीष सुनसी सहित हर सिंह
भांति गौरी आशीष सुनसी सहित हर सिंह अली
तुलसी भवानी पूजितुन मुदित मन मंदिर चली
तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली
श्री राम चंद्र त्रिपाल भजन कर कर भय दारुण
श्री राम चंद्र त्रिपाल भजन करण भव भय दारुण श्री राम जय जय राम श्री राम
जय राम जय जय राम
श्री राम
जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
जय रघुनंदन जय सिया राम
जय रघुनंदन जय सिया राम
जय रघुनंदन जय सिया राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे बोल हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
जय सीता राम लक्ष्मण मन हनुमान सीता राम लक्ष्मण मन हनुमान
जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान
जय सीता राम लक्ष्मण मन हनुमान सीता राम लक्ष्मण मन हनुमान
जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान
प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद
जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जगत गुरु श्रील प्रभु पाद की आज गेर आनंद की जय
Hare Hare